इंशाल्लाह ताला आज हम सूरा आले इमरान आयत नंबर 23 से 32 तक करेंगे। आज की जो आयत है इनमें तीन अहम चीज़ें आज इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। पहली अहम चीज़ उन सब लोगों के लिए जो मकरूज़ हैं, कर्ज में किसी तरह फंसे में हैं, तो उनके लिए बहुत एक समझने नुस्खा आ रहा है किस तरह कर्ज से निकला जाए। दूसरी अहम चीज़, आप लोगों का एक सवाल होता है हमेशा कि हम गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती रख सकते हैं या नहीं, आज उसका भी आपको जवाब मिलेगा। नंबर तीन, जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करे, हर एक की जाहिर है किसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी, तो जिसकी भी ये ख्वाहिश है आज बता दिया जाएगा इन आयात में कि उसको क्या करना। जाहिर है आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो ये चाहेंगे अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करें, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो इंशाल्लाह ये तीन अहम टॉपिक्स हम आज इंशाल्लाह देखेंगे आयत नंबर 23 से 32 सूरत आले इमरान। अलम तरा इलल्लदीन ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो किताब का एक हिस्सा दिए गए। ये कौन लोग हैं जिनको किताब दी गई थी? जैसे हम पहले भी सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं बनी इसराइल के बारे में, तो यहाँ पे भी मदीना के इर्द गिर्द यहूद कबाइल आबाद थे और अल्लाह ताला ने हमें बार बार इनकी मिसाल दी है यहूदियों की, बनी इसराइल की, कि इनके ये काम थे। हमें क्यों बताए गए? हम सूरह बकरा में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि वो पहले उम्मत मुस्लिमा हुआ करते थे, पहली वो चुनी हुई उम्मत थे, लेकिन फिर उनको इस ऑनर या इस जो ओहदा था इससे उनको माजूल कर दिया गया, वो फायर हो गए और उसके बाद ये जगह उम्मत मुस्लिमा को मिली। अब चुनी हुई उम्मत ये है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनको समझाया जा रहा है कि ऐसा ना हो तुम भी उसी रास्ते पे चलने लगो जिस रास्ते पे वो चले थे। अब यहां पे भी उनकी एक बात को हाईलाइट किया गया कि वो क्या करते थे, उनका तर्ज अमल, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड अपनी किताब के साथ कैसा था। तो क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया? ये क्यों नहीं कहा गया ऊतुल किताब, किताब का एक हिस्सा क्यों कहा गया? इसलिए कि काफी सारी किताब तो इन्होंने चेंज ही कर दी थी, असल किताब तो इनके पास थी ही नहीं। और फिर वैसे भी इनके उलामा के पास समझने थोड़ा सा ही इल्म तौरात का रह गया था ना, वो असल किताब के जो अहकामात थे उनको तो पूरी तरह जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। तो जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया यानी थोड़ा सा इल्म इस किताब का उनको मिल गया, अब क्या है, युदाउना, वो बुलाए जाते हैं इला किताबिल्लाह, किताबिल्लाह की तरफ। अब इसके दो माने हैं, पहला मुराद हम किताबुल्लाह से अगर लें तौरात तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या माना बनता है। वो जब तौरात की तरफ ही बुलाए जाते हैं, उनको तौरात की तरफ फैसले के लिए बुलाया जाता है, तो इनका रिएक्शन क्या होता है? नहीं, किस वजह से बुलाया जाता है? लियहकुमा बैनहुम, ताकि वो किताब उनके दरमियान फैसला करे। तो उनका रिएक्शन क्या होता है? सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, तो मुंह मोड़ जाता है एक ग्रोह उनमें से। किताब के मामले में इनका बिहेवियर क्या है कि मुंह मोड़ देते हैं, किताब को कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं समझते, उसके ऊपर अमल करने को दूर भागते हैं उससे। वहम मुआरिदून, और वो एराज करने वाले हैं कि किसी तरह हमें इसके ऊपर ना ही चलना पड़े। तो अब ये देखते हैं, एक तो इसका शाने नजूल भी देखते हैं। कहा जाता है कि खैबर के रहने वालों में, वो यहूदी थे वहां पे मूव हो गए थे, उनमें एक मर्द और एक औरत ने जिना किया, और शादीशुदा जानी की सजा उनकी किताब में भी रजम थी, यानी स्टोन टू डेथ थी इनकी सजा, संसार करना। लेकिन वो जानी चूंकि बहुत बड़ी फैमिली से थे, इसलिए यहूदियों ने उनको संसार करना मुनासिब नहीं समझा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मामला पेश किया। उनको ये उम्मीद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस सजा में हो सकता है कुछ कमी मिल जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को रजम करने का हुक्म दे दिया। तो उनके बड़े बड़े कुछ आलिम थे, इस सजा को सुन के बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फैसला गलत है, इनके लिए संसार करने का हुक्म नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे तुम्हारे कौल का फैसला तौरात से हो सकता है, तौरात ले आओ। वो बोले, आपने इंसाफ की बात कही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में तौरात का सबसे बड़ा आलिम कौन है? उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो फिद का बाशिंदा है, उसको इब्ने सूरिया कहते हैं, तो वो हमारा बहुत बड़ा आलिम है। तो वो जो यहूदी थे उन्होंने इब्ने सूरिया को बुलवा लिया, वो मदीना आ गया। जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उससे कि तुम इब्ने सूरिया? उसने कहा जी हाँ। फरमाया, क्या तुम यहूदियों के सबसे बड़े आलिम हो? उसने कहा लोग ऐसा ही समझते हैं मुझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात का वो हिस्सा मंगवाया जिसमें रजम का हुक्म था और फरमाया इसको पढ़ो। इब्ने सूरिया ने तौरात पढ़नी शुरू की और जब आयत रजम आई ना तो अपना हाथ उस पर रख दिया और उससे आगे पढ़ने लगा, उसको स्किप ही कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, आपको पता है वो रिवर्टेड थे, यहूद से यहूदी थे, मुसलमान हुए थे, तो उनको तो पता था, वो भी बहुत बड़े आलिम थे। तो वो कहने लगे, या रसूलल्लाह ये आयत रजम को छोड़ गया। फिर अब्दुल्ला बिन सलाम ने खुद उठ के उसका हाथ आयत रजम से हटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और यहूदियों को, बाकी यहूदियों को पढ़ के सुनाया कि इसकी सजा ये है। इस फैसले के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को संसार कर दिया और यहूदी नाराज होकर लौट गए। इस पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि देखो इनको एक हिस्सा किताब का दिया गया है और इनको जब इनकी ही किताब की तरफ बुलाया जाता है तो ये उसको भी नहीं कुछ समझते। किताब इसलिए है ताकि किताब से फैसला लिया जाए, किताब बताए। देखिए किताब किस लिए होती है, ये सिर्फ आपके लिए सवाब हासिल करने के लिए, कोई जंतर मंतर नहीं है कि बस अब हमने इतने कुरान खत्म कर लिए, हमने ये कर लिया। किताब अल्लाह ताला ने एक कानून भेजा है कि इसके ऊपर अमल किया जाए, इसको फॉलो किया जाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इसी के फैसलों से कतराते हैं जो किताब अल्लाह ने इनकी तरफ भेजी है। और दूसरा हुक्म, दूसरा अगर इससे लिया जाए, युदाउना इला किताब अल्लाह, अगर इससे मुराद किताब अल्लाह से कुरान लिया जाए, तो इनको अगर कुरान की तरफ दावत दी जाती है, ये जो अहले किताब हैं, जो यहूदी हैं, अगर इनको बुलाया जाता है कुरान की तरफ ताकि कुरान इनके दरमियान फैसला कर दे, क्या फैसला करेगा कुरान कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, तो वो कुरानी फैसले को भी नहीं मानते। कुरान तो फैसला कुन किताब है ना, यहूदा नासारा का बताता है कि ये हक पे नहीं है, मगर वो इस फैसले को समझते ही नहीं, कुछ इसे मुंह मोड़ जाते हैं। तो यानी इनका अपनी किताब से भी यही रवैया है और कुरान से भी है। अच्छा, इसी के थोड़ा सा आप इसके अंदर ये भी देखें कि आज मुसलमानों का क्या हाल है। इनके पास एक किताब है कुरान, इनको कुरान का इल्म दिया गया, कुरान इनके पास आया, और जब मुसलमानों को युदाउना इला किताबिल्लाह बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ, किस लिए बुलाया जाता है, ताकि अल्लाह की किताब इनमें फैसला करे कि हक क्या है, तो क्या कहते हैं, नहीं सियासत तो हम अपने मुताबिक करेंगे, नहीं हमारी इकोनॉमी तो हमारे मुताबिक चलेगी, नहीं हमारी अदालतों में, कोर्ट्स में तो ब्रिटिश का कानून चलेगा, नहीं हमारी पार्लियामेंट हमारे लिए फैसले करेगी, जो बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो गया वही चलेगा। जब अल्लाह का कानून मौजूद है तो किसी इंसान का लाया हुआ कानून कैसे चल सकता है? यही अल्लाह की किताब का मकसद होता है ना कि अल्लाह का हुक्म आ जाए तो कोई और कानून उसके आगे नहीं ठहरेगा। ये तो जाहिलियत है अगर अल्लाह के कानून में आप किसी गैर का कानून मानने लगे। अफा हुक्मुल जाहिलियत यबगून, अल्लाह ताला ने सूरह मायदा आयत नंबर 5 में फरमाया, क्या ये लोग जाहिलियत का कानून मानते हैं? तो इन लोगों को भी देख लो, इनके पास भी किताब थी, वो किताब उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल थी। ये नहीं कि वो अपनी तौरात की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो बहुत ज्यादा अपनी तौरात को रिस्पेक्ट देते थे, बल्कि उनके बड़े बड़े आलिम बस अपने पास किताब रखते थे, किसी और को किताब आम लोगों तक नहीं पहुंचने देते थे, क्योंकि ये इतनी हाईली रिस्पेक्टेबल है कि ये आम लोग तो इसको समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते, इसको सिर्फ उलमा तक रहने दिया जाए, इतनी वो तौरात को बड़ी अहमियत देते थे। लेकिन हाल ये था कि वही तौरात अगर कोई हुक्म देती थी कि ये करो ये नहीं करो तो उसको मानना ही नहीं। तो जब अपने किताब के हुक्मों को ही नहीं मानना तो फिर किताब किस लिए है? हाँ, सिर्फ रिस्पेक्ट करने के लिए, ऊपर रख देने के लिए। और बाकी टाइम जब किताब फैसला दे कि भाई देखो ऐसे जिंदगी गुजारो, और तो तुम इस तरह से रहो, तुम ऐसे ये खाओगे ये नहीं खाओगे, ये पहनोगे ये नहीं पहनोगे, ऐसे तुम्हारी इकोनॉमी चलेगी ऐसे नहीं चलेगी, हलाल ये है हराम ये है, तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं हमसे हो सकता। तो क्या हम नहीं मुंह मोड़ते? क्या हम नहीं एराज कर रहे? आज हमें ये बातें इसलिए बताई गई, देखो उन्होंने ऐसा किया था, तुम ना अपनी किताब से ऐसा करना, लेकिन हम वही चीज कर रहे हैं, क्या फर्क रह गया? आज हमने भी किताब का कानून नहीं माना, ना हमारे मुल्कों के अंदर वो कानून चलता है। सिर्फ एक ही मुल्क है दुनिया के अंदर जहां पे अल्लाह की किताब का कानून राइज है, उसके अलावा तो कोई भी मुल्क नहीं है, सब अपने अपने कवानीन बना के बैठे हैं, अल्लाह की किताब को तो पीछे डाल दिया। और ना मुल्कों में ना इंडिविजुअल लाइफ्स में हमें इस किताब को इस काबिल समझते हैं कि इससे फैसला लें। किताब क्या कहती है, निकाह के बारे में क्या कहती है, तलाक के बारे में क्या कहती है, फिर आपके मेहर इसके बारे में क्या कहती है, वो हम फैसले नहीं लेना चाहते। मियां बीवी के ताल्लुकात के बारे में क्या कहती है, वो हम अपने कवानीन चलाना चाहते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत, यानी एक लम्हा फिक्रिया, एक बात गौर करने की है कि हमारे बिहेवियर्स टुवर्ड्स आर बुक क्या वही तो नहीं हो गए जो यहूद के थे और जिनको कंडेम किया गया कुरान। ज़ालिक कभी अन्नहुम कालू, ये इस वजह से है, ये वो क्यों करते थे कि किताब से पहलू तही क्यों करते थे, ज़ालिका ये बिकॉज भी इस वजह से है कि बेशक वो कहते थे लन तमसन नारु इल्ला अय्याम मादूदात, हमने तो आग में जाना ही नहीं, अगर गए भी तो गिनती के चंद दिन के लिए जाएंगे बस, हम कैसे आग में जा सकते भाई, अल्लाह के इतने लाडले हैं, हम इतने प्यारे हैं, नहनु अबना अल्लाह वाहिबाहू, हम अल्लाह के बेटे हैं, उसके लाडले बेटे, इसलिए कहते थे, ये नहीं कहते थे कि वो अल्लाह माफ करे अपने आप को अल्लाह के बेटे समझते थे, बल्कि यानी लाडले होने के उसमें के, जैसे बेटे इंसान को बड़े लाडले होते हैं प्यारे होते हैं, तो हम इस तरह से हैं, और कहते थे कि हम क्यों आग के अंदर जाएंगे, हमारा तो फलां फलां हमें बचा लेंगे, और फिर हम अगर आग में गए भी तो सिर्फ उतने दिन के लिए जाएंगे जितने दिन हमने बछड़े की पूजा की थी। मतलब खुद ही से अपनी बातें बनाई हुई, किसने इनको कह दिया कि सिर्फ इतने दिन के लिए जाओगे, या किसने इनको आके बता दिया तुम इतने लाडले हो तुमने तो आग में कभी जा ही नहीं सकते चाहे तुम जो मर्जी करो। तो ये जो इनका काम था ना कि अल्लाह की किताब के हुक्मों को पीछे डाल दिया, उससे कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे, अपने खुद ही फैसले करने बैठ जाते थे, जो इनके उलमा होते थे जब उनके पास लोग जाते थे कि आप हमें कोई फतवा दें, तो देखते थे भाई अगर ये तो बहुत अमीर कबीर और खानदानी लोग हैं तो उनके लिए उस मुताबिक फतवा खुद ही घड़ लेते थे, खुद ही बना लेते थे, अपने मनमाने फतवे बनाए हुए थे जो दिल चाहता था, किताब को नहीं कंसल्ट करते थे, क्योंकि उनको खुश करना था ना लोगों को। ये इस सारी की वजह क्या है, क्यों लोगों का ऐसे बिहेवियर होता है, वो किताब से ऐसे कतराते हैं, क्योंकि इनका पीछे जो बेस है ना उसमें खराबी है। और वो क्या है बेस में खराबी, कि जब इंसान ये समझने लगता है ना कि मुझे किसी ने नहीं पूछना, कोई सजा जजा नहीं है, तो फिर वो बेबाक हो जाता है, फिर वो खुद को फ्री समझता है कि मैं जो मर्जी करूं मुझे कौन पकड़ेगा। ऐसे ही समझ लें जैसे अगर आपको पता चल जाए, या ऐसे होता भी है हमारे मुल्कों में, जिन लोगों के बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना बड़े बड़े लोगों के साथ, कोई सियासतदानों के साथ, तो फिर वो अपने आप को आजाद समझते हैं कि हमारे पर कोई सजा नहीं लगेगी, हम चाहे रेड लाइट तोड़ें, चाहे हम किसी को पीट दें मारें कुछ भी करें, हमें कौन पकड़ सकता है, मेरे ताल्लुकात फलां के साथ हैं, मैं तो बच जाऊंगा। तो फिर देखा है कि वो उनके हालात क्या होते हैं, वो तो कानून को कुछ समझते नहीं। इसी तरह जब इंसान को यह पता होगा कि क्यामत आ भी जाए तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैंने तो सीधे जन्नत में जाना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो आप बताएं कि वो इंसान क्या कभी सीधा चल सकता है? उसको क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि वो एक पाबंद जिंदगी गुजारे? देखें, जो दीन है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो एक बाउंड जिंदगी गुजारने के लिए आपको बाउंड कर देता है, यानी एक आप आजाद नहीं रहते, वो कहता है नहीं ये लिमिट है, इससे आगे नहीं जाना। आपको दीन कहता है कि नहीं ये हराम है, इसमें नहीं जाके मुंह मारना, तो दीन तो आपको बाउंड कर देता है, तो उनको क्या जरूरत है कि एक बाउंड जिंदगी गुजारें और दीन को इतना अपने ऊपर लागू करें? वो कहते हैं ठीक है, वहां पे भी जाएंगे तो सीधे सीधे जन्नत में चले जाएंगे, कोई मसला ही नहीं। तो उनका ये अकीदा था, और किस लिए अकीदा था कि वह गर्रहुम फी दीनहिम मा कानू यफ्तरून, धोखे में डाल दिया था उनको उनके दीन के बारे में जो उन्होंने झूठ घड़े हुए थे, जो झूठ घड़े हुए थे ना उसकी वजह से वो धोखे में थे। और वो झूठ क्या थे? यही झूठ थे ना कि वो ये सोचते थे कि एक तो ये झूठ था कि हम तो आग में थोड़े दिन रहेंगे और उसके बाद निकाल लिए जाएंगे, ये भी झूठ था कि हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, और ये भी झूठ था उनका कि हम ही हिदायत याफ्ता हैं। हमने पिछले पारे में पढ़ा था ना सूरह बकरा में कि वो सोचते थे कि जो यहूदी होगा या जो नसरानी होगा वो ही हिदायत पे है, अब बाकी सारे वो तो सब गुमराह हैं। तो ये इन्होंने सारे खुद ही झूठ घड़ घड़ के खुद ही एक ना यानी फॉल्स इनकी एक होप्स या कह लें इफ्तरा कह लें झूठे अकीदे कह लें, ये सब उनके झूठे अकीदे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उन जाहिर है इंसान अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तो कुछ ना कुछ तो घड़ेगा ना, तो आप बताएं कि जिस बंदे का ये अकीदा हो जाए, जिसने झूठ खुद ही घड़ लिया हो कि मैंने तो आग में रहना नहीं, अगर बिलफर्ज ला महला अल्लाह दिखाने के लिए सब लोगों को हमें आग में डाल भी देगा ना तो फौरन निकाल लेगा, क्योंकि वो अपने प्यारों को थोड़ी आग में डालेगा। मुझे बताएं वो क्यों दुनिया में इतनी मुश्किल उठाएगा, कुर्बानियां क्यों देगा, सही पे चलने के लिए हलाल खाने के लिए वो इतनी तगोदो क्यों करेगा? क्यों ना वो जैसा मन चाही जिंदगी गुजारे, जैसा दिल करे वैसा चले, खुद ही सोचे ना। तो ये जो बेस है ना, जब इस अकीदे में बेस में खराबी आ जाती है ना, उसको फिर क्या जरूरत है अल्लाह के कुरान से आके फैसले ले कि अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, दे डोंट केयर। आज देखें मुसलमानों में एग्जैक्टली सेम चीज है। आज मुसलमान का अकीदा क्या है? हमने कहा आग में जाना है, जहन्नुम थोड़ी हमारे लिए, वो तो इन काफरों के लिए है जहन्नुम। आप आम लोगों से पूछे ना, उनका यही, हम तो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम तसल्ली में आ गए, जैसे कि कलमा पढ़ना ही हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इन चीजों ने हमें इतना धोखे में डाल रखा है, इतना धोखे में डाल रखा है कि हम ये सोचते हैं कि हमने जाना है क्यामत के दिन, बस जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुले होंगे, सीधे हमने एंटर हो जाना, और अगर हम में से कोई चला ही गया जहन्नुम में तो फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको निकलवा लेंगे, उन्होंने तो जन्नत में एंटर ही नहीं होना जब तक अपनी उम्मतियों को ना निकलवा लें। ठीक है, शिफात है, लेकिन उसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। शिफात किसकी होगी, किसके लिए होगी? हमने आयतल कुर्सी में भी बहुत अच्छी तरह से ये सब चीजें समझी थी। तो ये चीजें इंसान को धोखे में डाल देती हैं। फिर हमारे यहाँ क्या क्या चीजें घड़ी हुई हैं? आसान आसान नुस्खे घड़ लिए हैं ना, खुद ही बना लिए हैं, खुद ही झूठे, क्योंकि वो आसान आसान चीजें ऐसी बना ली हैं जिनसे हम अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं, और उनसे ये होता है कि कुछ करना तो पड़ता नहीं है, बस वो हमने कॉन्सेप्ट हमारे एक बन चुके हैं कि वो फलां का हम दामन पकड़ लेंगे ना, बस उसका दामन पकड़ के हमने भी जीते, उसके पीछे पीछे हमने भी जन्नत में चले जाना, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रोजा रखो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारे और कॉन्सेप्ट्स देख लें, खुद ही घड़े में इफ्तरा परदाजी है ना, यानी कहीं लिखा है, कहीं तुमने देखा है, कहीं तुमने पढ़ा है ये बात, तो फिर इंसान को समझ भी है। अगर आपको कहीं पे भी इसका सबूत नहीं मिला तो फिर क्या है, ये इफ्तरा है, झूठ है जो घड़े में है, इनसे अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। देखिए, कोई इंसान धोखे में नहीं पड़ना चाहता। कोई चाहता है कि मुझे धोखा हो, कोई भी नहीं धोखा खाना चाहता। फिर ये कैसे धोखे में पड़ जाते हैं? इसलिए कि अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आते, इससे दूर है। तो धोखे में ही है ना, क्योंकि जब अल्लाह की किताब है वो बताएगी कि राइट वे क्या है जन्नत में जाने का, राइट कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जब इसकी तरफ ही नहीं आते, धोखे में ही रहते रहते हैं, जिंदगियां गुजर जाती हैं इसी धोखे में। आप कहीं से तसल्ली तो लेनी है तो बस जो वो चीजें घर लिया। देखे हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हम लोगों की कितनी खिदमत करते हैं, हम सोशल वर्क कितना करते हैं। अल्लाह ने बस इसी से खुश हो जाना। और देखें भाई, देखें हकुकुल्लाह की क्या बात है। हकुकुल्लाह तो अल्लाह ने वैसे ही माफ कर देने, हकुकुल इबाद नहीं उसने माफ करने। बस हकुकुल इबाद पूरे करते रहो, हकुकुल्लाह की कोई जरूरत ही नहीं। वो तो हम नहीं भी करेंगे तो अल्लाह ने ऐसे ही माफ कर देना है। ये कहां से ले लिया, किसने कहा ये? क्या ये झूठ इफ्तरा नहीं है? क्या ये झूठ घड़ना नहीं है? हम तो लोगों की इतनी खिदमत कर लेते हैं, हमारे अखलाक इतने अच्छे हैं। अब हमारे अखलाक इतने अच्छे हैं तो उसके बाद हम कुरान सीखें, पढ़ें ना पढ़ें, कुरान को कोई अहमियत दें ना दें, उसके अंदर जो हुक्म हलाल हराम का है उसको कुछ समझे ना समझे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारे अखलाक देखें कितने अच्छे, ऐसे अखलाक कहाँ नमाजियों को हमने देखा, उनके तो ऐसे अखलाक नहीं होते। हम देखें कितने अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, हम कितने पोलाइट हैं। चलो जी, इससे खुद को धोखे में डाल रखा। तो इस धोखे से निकलो, और कौन सी चीज हमें इस धोखे से निकालेगी? ये जो झूठ है, ये जो सारे है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये झूठे कॉन्सेप्ट्स घड़े में? ये कुरान की तरफ आओगे तो पता चलेगा ना। कुरान फैसला करके बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या झूठ है और क्या सच है। इसी तरह और भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे आम पब्लिक में इतने आम है, इतनी मतलब बेअसूल, जिसका कोई असूल नहीं है। ऐसी शिफात का हमने खुद ही अपने जहनों के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, फलां शिफात करा देगा, फलां चट करा देगा, हमने फलां पीर साहब हैं उनके हम मुरीद हैं, हम फलां फिरके से हैं। अच्छा ये भी बहुत एक बहुत है, हम फलां फिरके से हैं, बस हम तो बख्शे बख्शे हैं। अब वो फिरके के अंदर हो जाना ही उनके लिए वो समझते हैं कि बस काफी है। और हर 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 फिरके वाला अपने आप को ना समझता है कि हम बस, और अगर उनका कोई पीर है बड़ा, उस फिरके का कोई बड़ा यानी जो उनका टॉप का है बंदा, तो अगर वो कोई है तो फिर तो ये समझते हैं बस उन्होंने, हम उनके मुरीद बन गए हैं, बस वो खुद ही हमें ले जाएंगे। अब ये एक लतीफा समझ लें या कुछ भी समझें, ये एक सच्ची बात है। वही तो एक आदमी ऐसे नहीं कि जो जाहिल था, लेकिन वो अपने पीर साहब के पास आया तो उसने बड़ी गर्म जोशी से उनके साथ हाथ मिलाया, उनके हाथ चूमे। अब वो काफी अरसे बाद आया था, पीर साहब को क्या पता इतने उसके मुरीद आगे पीछे होते हैं। तो पीर साहब अब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुरीद समझ गया कि पीर साहब ने मुझे नहीं पहचाना, तो उसने पूछा आपने मुझे पहचाना है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। मुरीद ने जवाब दिया छोड़ें जी, फिर इधर ही नहीं पहचाना तो उधर क्या पहचानोगे। देखिए बात कितनी सही है कि जब हम समझते हैं ना कि ये लोग हमें वहां बख्शवा लेंगे, हम यहाँ पे बेनमाजी रहें, हम यहाँ पे रोजे छोड़ दें, हम कुछ भी करें, इन्होंने वहां, ये इनका सहारा काफी है, ये मुझे वहां पे छुड़ा लेंगे, ये तो देख लो वो तो आपको दुनिया में भी नहीं पहचानते। तो वो लोग जो समझते थे ना कि हमें भी वहां जाके आग छुएगी नहीं, अव्वल छू ही लिया तो चंद दिन के लिए, तो उनके भी पीछे ये बातिल नजरिया थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया मैं यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर भी खैर की होगी ना तो इंसान अपनी आंखों से देख ले, और जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी तो उसके नतीजे को भी देख ले। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं होगा कि करे कोई और भरे कोई। सूरह नजम में अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, मेहनत की, खुद अमल किया, वही उसको मिलेगा। और जिस जगह पे जिस किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है उसको कोई पढ़ता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं। तो हम ये बड़े आराम से समझे बैठे हैं, हमने तो अपना इंतजाम किया हुआ है, हमें तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई, हम तो इनके पीछे हैं। अब बताएं जरा, जिनके पीछे आप अपने आप को समझ रहे हैं, क्या उनके लिए जन्नत गारंटीड है? आर यू श्योर कि वो जन्नत में ही जाएंगे? किसी को अगर कह दिया तो नाराज हो जाएगा कि आपने हमारे पीर के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, लेकिन किसकी गारंटी है बताएं, सिवाय अंबिया और सहाबा कराम के? और किसको गारंटी अल्लाह ताला ने बता दिया कि फलां तुमने तो जन्नत में ही जाना है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह रहे हैं, या फातिमा ए मली ए मली ए मली, ए फातिमा तुम खुद अपने लिए अमल करो, अपने लिए अमल करो, अपने लिए अमल करो, इसमें ना रहना कि मैं अल्लाह के रसूल की बेटी हूं। जब हजरत नूह अपने बेटे को डूबता हुआ देख के और बेबस हो जाते हैं, बिल्कुल उसको बचा नहीं सकते, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सक्के बाप आजर के बारे में दुआ इस्तगफार करते हैं तो रोक दिया जाता है अपने बाप के बारे में दुआ ना करो। जब बाप बेटे के बारे में कुछ नहीं कर सकता, बेटा बाप के बारे में कुछ नहीं कर सकता पैगंबर होके, तो कोई और इंसान किसी को कैसे छुड़वा सकता? तो इसलिए दुनिया में अपने लिए खुद अमल करें, अपना खुद इंतजाम करें, ये मत सोचें कि उस दिन जाएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन आग में रहना। तो अल्लाह ताला ने देखें सुबहान अल्लाह अगली आयत में बजाय इसके कि इनके इन गलत कॉन्सेप्ट्स का जवाब दिया जाता, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फकैफा तो किस तरह होगा, क्या बनेगा तुम्हारा, जिस तरह हम कहते हैं ना क्या बनेगा तुम्हारा, इज़ा जमअनाहुम लियौमिल्ला रैब फी, जब जमा करेंगे हम उनको एक दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं, क्या बनेगा उस वक्त बताओ, कैसा वो वक्त होगा, उस वक्त क्या होगा, क्या हाल होगा तुम्हारा। इस कदर खौफनाक दिन है आगे आ रहा, जरा सोचो तो सही, जरा इमेजिन करो अपने आप को उस हशर के मैदान में। अल्लाह ताला ने इंसान को लाके खड़ा कर दिया उस मैदान में जहां सब जमा, तिल धरने की जगह तक नहीं, सबके फैसले हो रहे हैं, जरा भी ना इंसाफी नहीं हो रही, वुफियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ कोई भी ज्यादती कमी जुल्म नहीं किया जाएगा, जहां पे हर एक को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दिया जा रहा है, वहां पे मुझे बताएं कि कोई मुजरिम है तो कोई आके कैसे उसको हाथ पकड़ के उठा के ले जाए कि नहीं ये तो मेरा जानने वाला है और ये तो मेरा मुरीद है और इसको तो मैं इसका हिसाब किताब नहीं होने दूंगा, किसकी जरूरत होगी। तो सोचो खुद को वहां पे, तुम कहते थोड़े दिन के लिए आग में जाएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे, जरा खुद को इमेजिन करो तो सही उस जगह पर जहां पे सब अकेले अकेले खड़े होंगे, बिल्कुल तन्हा, जरा सा भी इंसान के अंदर थोड़ा शऊर हो ना, हिस हो, तो झुरझुरी आ जाती है, दिल कांप उठता है कि कितना खौफनाक दिन होगा। वो सिर्फ एक सवाल किया गया, जवाब इंसान पे छोड़ दिया गया कि अब खुद ही सोचो तुम, उस वक्त मेरा बनेगा क्या, सब जमा होंगे लेकिन स्टिल इंसान बिल्कुल अकेला होगा, ऑल अलोन, इतनी मखलूक है, कोई नहीं है जो रह गया, वो फियत कुल्लु नफ्स, हर नफ्स को, अमीर है गरीब है औरत है मर्द है बूढ़ा था जवान था बच्चा था जो भी था, हर एक को जो उसने कमाई की उसका बदला मिल जाए, बादशाह था फकीर था। तो ऐसे मजमे में एक इंसान का सिर्फ यही सब तस्वर करे ना कि मैं बिल्कुल तन्हा होंगी, बिल्कुल अकेली मुझे अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है, तो वही चीज इंसान को इतना परेशान कर देती है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है पूंजी, और अल्लाह वो है जो मेरे दिल के अंदर के हालात को भी जानता है, मेरे आमाल नामे में एक एक चीज उसके हाँ रिकॉर्ड है, एक एक अमल रिकॉर्ड है उसके यहां, मैं बच कैसे सकूंगी, ये चीज उसको बहुत परेशान कर देती है। फिर वो ये नहीं सोचता हमने तो आग में जाना है थोड़े दिन के लिए, अब मुझे फलां बचा लेगा या मुझे फलां कुछ कर लेगा, अभी मैंने आपको बताया पैगंबर तक नहीं बचा सके, और किसी का क्या कहना। अल्लाह ताला ने पूछा है बताओ उस वक्त क्या बनेगा तुम्हारा, जमा तो होना ही है चाहे तुम चाहो नहीं चाहो, जमा ना हम जमा करेंगे। ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई चॉइस है तुम्हारे पास कि आना है तो आ जाओ नहीं आना तो नहीं आओ, नहीं, ये खौफनाक धमकी है। और जब वहां पे हिसाब किताब होने लगा, नेमतों का हिसाब, हकूक का हिसाब, जुबान से निकले हुए अल्फाज का हिसाब, बंद कमरों की बातों का हिसाब, जो आगे भेजा उसका हिसाब, जो पीछे छोड़ा उसका हिसाब, जो दिलों में छुपा हुआ था उस सब का हिसाब, तो मुझे बताएं ऐसे वक्त के लिए कौन किसको याद रखेगा। हर एक को अपनी अपनी नहीं पड़ी होगी क्या। तो इस धोखे में इस दुनिया में ना रहें कि कुछ नहीं होना और ऐसे नहीं होगा। हमने जहां पे इन लोगों की और चीजों को कॉपी किया ना, वहां पे हमने इनके अकीदे को भी कॉपी कर लिया, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम वही अकीदे हमने भी अपना लिए। हालांकि हमारे भी यहाँ पे कोई किसी जगह पे भी कुरान और सुन्नत में ये नहीं आप जो मर्जी करो बस एक दफा कलमा पढ़ लो उसके बाद आप काफी है आपके लिए। हाँ ये है जरूर हदीस में कि ईमान अगर जरा बराबर भी होगा तो एक दिन जहन्नुम से निकल आए ईमान, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कलमा को जिसने कलमा पढ़ लिया है उसके अंदर ईमान भी हो। जरूरी नहीं हर मुस्लिम मोमिन भी हो। हर मुसलमान के अंदर ईमान है क्या? मुंह से जुबान से तो कलमा पढ़ा हुआ है क्योंकि बॉर्न मुस्लिम थे बस ठीक है, मुसलमान घराने में पैदा हुए, उसके बाद ईमान नाम को भी नहीं है, पता ही नहीं ईमान क्या है। तो फिर ईमान अलग चीज है, कलमा पढ़ना अलग चीज है। ईमान अगर वाकई सच्चा ईमान हुआ तो फिर तो निकल जाएंगे, और अगर ऐसे हुआ कि जो अब देखे मुनाफिकीन भी तो थे, उन्होंने भी तो कलमा पढ़ा था और वो नमाजें भी पढ़ते थे, लेकिन जहन्नुम में होंगे, सबसे नीचे होंगे जहन्नुम में। तो बात है ईमान की, बात जुबानी कलामी बातें करने की नहीं है। अल्लाह ताला उस दिन की दहशत से और उस दिन की मुश्किलों से और उस दिन के खौफनाक मनाजिर और अंजाम से हम सबको महफूज रखे, क्योंकि वो दिन बहुत सख्त है और अल्लाह ताला ने हम पे छोड़ दिया। अब खुद ही सोच लो कि क्या बनेगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा। तिलावत यहाँ तक सुनिए फिर आगे चलते हैं।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون।
अब ये वो आयत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर कोई तंगदस्त है या मकरूज है वो इस आयत को पढ़ेगा, आयत नंबर 26 और 27 बेगैरी हिसाब तक कुल अल्लाहुम्मा से लेके, तो अल्लाह ताला उसके हालात जरूर बदल देगा। क्योंकि एक रिवायत में आता है कि हजरत मुआज जो थे वो एक बार कर्ज की उन्होंने शिकायत की थी, वो जुमे की नमाज पे नहीं आ सके थे क्योंकि उन्होंने एक यहूदी का कर्ज लौटाना था और वो यहूदी उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और कहने लगा कि जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैंने जाने नहीं देनी। तो इस पे उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ دعا سکھائی اور فرمایا یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا۔ تو یہ بہت ہی زبردست دعا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اعظم ہے اس دعا میں۔ تو جن کو بھی ایسی رزق کی تنگیاں ہوں یا قرض ہوں تو ان کے لیے بہت اچھی یہ دعا ہے۔ اسی طرح تبرانی میں بھی ایک روایت ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ اگر تم وہ دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دے گا، خواہ وہ گوہ شبیر کے برابر ہو۔ تو پڑھو اللہم مالک الملک اور بغیر حساب تک۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا دیکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ مالک الملک، اے مالک ملک کے، بادشاہت کے مالک، ملک ہے سلطنت، غلبہ، ملکیت، اختیار۔ جو انسان کا جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے نا، اس کا اختیار ہوتا ہے، فیصلے اس کے چلتے ہیں۔ تو مالک ہے تمام بادشاہت کا، ایسی کائنات کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ سورج اس کا غلام، چاند اس کا غلام، تارے اس کے غلام، فرشتے اس کے غلام، سب کے پر وہ ایک تنے تنہا بادشاہ ہے۔ اور وہ جس کو چاہتا ہے پھر وہ بادشاہت دیتا ہے۔ تو اتل ملکہ، تو دیتا ہے بادشاہت من تشا، جس کو تو چاہتا ہے، اس لیے کہ ساری بادشاہت تو اس کے پاس ہے نا، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں لوگ بادشاہت کے لیے قتل و غارت کرتے ہیں، کوئی کسی سے جنگ کر رہا ہے، کوئی زبردستی قبضہ کر رہا ہے، یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے نا۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے اس سے چھین لیا، اس نے اس سے کر کے بادشاہت لے لی۔ وہ دنیا میں اسباب تو بنتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، فیصلہ اس کے پاس سے آتا ہے کہ کس نے بادشاہ بننا۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نیچے گرا دیتا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے اور یہ تو ہمارے گھر کے نوکر ہیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اللہ بادشاہت عطا کر دیتا ہے، خزانے سارے اس کے پاس ہیں۔ یہ جو بادشاہت کا خزانہ ہے، عزت کا خزانہ ہے، روزی رزق روزی کا خزانہ ہے، جتنے بھی یہ خزانے ہیں نا، صحت کا خزانہ ہے، یہ سمجھ لیں۔ ایسے آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں، دیکھیں مثلاً ہے کہ اگر ایک کمرہ ہے جس کی چابی میرے پاس ہے، اور اگر آپ کو وہاں سے کوئی چیز چاہیے تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے کہیں گے کہ کمرہ کھولیں تو مجھے وہاں سے چیز چاہیے۔ جب تک میں کمرہ نہیں کھولتی تو آپ وہاں سے چیز نہیں پا سکتے۔ آپ کو اب کچھ لینا ہوگا تو آپ کو میرے پاس آنا ہوگا کہ نہیں آپ چابی لگائیں، ہم میرے لیے یہ چیز مجھے وہاں سے دیں۔ اچھا، اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ جو خزانے ہیں نا، یہ سارے ان کی چابیاں، ان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جس کے لیے وہ چاہے وہ دروازہ کھولے گا تو اس کو ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ یہ آیات نا انسان کو دوسرے ہر در سے بے نیاز کر دیتی ہیں، ہر جگہ جھکنے سے بے نیاز کر دیتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے سارے خزانوں کا مالک تو وہی ہے۔ یہی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں نا، وہ ملک چاہیے، بادشاہ چاہیے، کہیں کا اقتدار چاہیے، کہیں کی کرسی چاہیے، کہیں بڑا ہونا چاہیے، کہیں عزت چاہیے، کہیں صحت چاہیے، کہیں روزی چاہیے، یہی چاہیے ہوتا ہے نا انسان کو۔ اسی کے لیے انسان اوروں کے دروں پہ جاتا ہے، وہاں پہ ماتھے ٹیکتا ہے، کبھی کسی کی خدمت کرتا ہے، کبھی کسی کے آگے بچ بچ جاتا ہے، کبھی کسی کی چاپلوسی کرتا ہے، کبھی کسی کی خوشامد کرتا ہے، اور نہیں، کہیں پہ بھی نہیں تمہیں جانے کی ضرورت۔ یہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اس کے پاس ہے ساری چابیاں۔ تمہیں کچھ چاہیے نا تو جب تک وہ نہیں دروازہ کھولے گا اپنے خزانوں کا، تمہیں نہیں مل سکتا۔ ठीक है। और देखिए तंजियाऊ का आया, लेने का वैसे कोई और वर्ड भी आ सकता था लेकिन तंजियाऊ आया है। मैंने आपको कहा ना खींच लेना, छीन लेना, जान निकलने के लिए, रूह के निकलने के लिए भी यही वर्ड आता है ना, क्योंकि रूह भी जिस्म से निकलना नहीं चाहती तो उसको खींच के निकाला जाता है। तो ये बादशाहत भी कोई देना थोड़ी चाहता है। कभी कोई देखा है जो बंदा खुद ही कह रहा हो कि मेरे से बादशाहत ले लो? नहीं, हर एक बादशाहत अपने पास रखना चाहता है तो वो छीन लेता है। यानी इंसान का कोई बस नहीं है कि वो अपने पास रख सके, जब उसकी मर्जी आए, जब उसका वो चाहता है छीन लेता, ले लेता वापस। इंसान जितना मर्जी जोर लगा ले कि नहीं मैंने नहीं देनी, कोई कुर्सी है, कोई ओहदा है, आप बादशाहत को ये ना सिर्फ समझें कि बादशाहत पता नहीं मुझे पूरे मुल्क की बादशाहत मिल जानी है। नहीं, आपके घर की बादशाहत हो गई, आपकी कोई और आपको ओहदा मिला हुआ है, कोई और आपको कोई इज्जत का मकाम मिला हुआ है, कहीं पे भी पावर मिली हुई आपको, तो छीन लेता जिससे वो चाहता, जिसको चाहता दे देता, और जब चाहता है लेता और जब चाहता देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं और आप कितने बेवकूफ हैं कि हम अपने आप को परमानेंट मालिक समझ लेते हैं किसी भी चीज का, कि बस ये मेरी चीज है तो अब मेरी है, कोई नहीं मेरे से ले सकता। नहीं, जो दे रहा है वो ले भी सकता है, दी भी तो किसी और ने है ना, तो जिसने दी है वो ले सकता। मेरे और आपकी ये जो हम अपनी अथॉरिटी समझते हैं, मिल्कियत समझते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मेरी मर्जी चलेगी क्योंकि मेरी चीज है, तो ये किसने आपको कह दिया कि आपकी चीज है? नहीं, ये तो अल्लाह ने दी हुई है, ये तो अमानत है, कोई भी चीज आप ले लें। मालिकल मुल्क की मर्जी है तो आज आपको मिली हुई है, मालिकल मुल्क की मर्जी नहीं होगी तो छिन जाएगी, लूज हो जाएगी आपसे। क्या आप अपने सामने मिसालें नहीं देखते? बड़े बड़े लोगों की मिसालें देखते हैं ना, कितने ही लोग आपके सामने दुनिया में, अगर आपकी नजर है आप देख लें, बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह थे और आपके सामने उनको फांसियां लगी, आपके सामने उनके इख्तदार छिन गए, बहुत पावरफुल थे वो। किसी ने भी किया वो, हम इस चीज की उसमें नहीं जाते क्योंकि फैसला अल्टीमेट अल्लाह ही का है, किसी और का नहीं चलता। तो अब जब उसने दी है चीज, हम देखते हैं कि लोग आज तख्त पे हैं, कल तख्तादार पे हैं, कल गले में फंदा पड़ा होता। इसी तरह कोई नीचे आज फकीर है और फिर हम देखते हैं वो महलों में रह रहा। वक्त एक सा नहीं रहता, याद रखें। और ये भी समझ आ जाए हम सबको कि जो भी हमारी मिल्कियत में चीजें हैं वो हमारी मिल्कियत नहीं है, वो टेम्प्रेरी तौर पे अल्लाह ताला ने हमें उनका मालिक बनाया है। अब मसलन मिसाल के तौर पे देखें, एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां दी हुई हैं। अब वो एम्प्लॉयज कहने लगे ये तो गाड़ी हमारी है, कह सकते हैं हमारी गाड़ी मगर है तो कंपनी की ना, कंपनी ने दी भी है, कल को कंपनी वापस ले लेती है। कई अपने कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देती रहती है, तो आप वो कहें कि मैं तो अब जाए इस गाड़ी को कहीं मारूं, टक्कर लगाऊं, चाहे इसको बेच दूं, चाहे इसको खराब करूं, मेरी मर्जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। बैक ऑफ हिज माइंड ये होता है कि ये कंपनी की गाड़ी है। हमें जो भी चीज मिली हुई है ना वो मालिकल मुल्क की दी हुई है, कि हम कैसे उस पर अपनी मर्जी चला सकते हैं ये बताएं। ये जिंदगी किसने दी है? ये माल किसने दिया? ये वक्त किसने दिया? ये सलाहियतें एनर्जीज आपको किसने दी हैं? हाँ देखो तो सही कि अच्छा, फिर इंसान ना हमारे कॉन्सेप्ट्स देखिए यहां से पता चलते हैं। जब आपको कोई कहता है अपना वक्त अल्लाह के लिए लगाएं, तो आप कहते हैं नहीं हमारे पास वक्त नहीं है, तो वक्त का मालिक तो आपने खुद को समझ लिया ना फिर। वरना वक्त का मालिक अगर आप अल्लाह को समझते कि ये जो मेरे पास वक्त है इसका मालिक तो अल्लाह है, ये वक्त, ये जो जिंदगी मुझे दी है ये तो अल्लाह की अमानत है, तो जहां वो कहता है मैं वहां नहीं लगाऊंगी, तो फिर आपने अपने आप को मालिक समझा ना। आप ये कह रही हैं कि नहीं अल्लाह का नहीं है ये मेरा है, इसलिए मैं अपनी मर्जी करूंगी, मैं खुद फैसला करूंगी कि मैंने इसको किधर लगाना है। ये जो हमें फैसले करने में, डिसीजन मेक करने में मुश्किल आती है ना, कि मैं अपनी एनर्जीज कहाँ लगाऊं, मैं अपने पैसों को कहाँ लगाऊं, मैं अपनी स्किल्स को कहाँ लगाऊं, वो इसलिए आती है कि जब हम इन सब चीज़ों को अपनी मिल्कियत समझते हैं। अगर हम ये समझेंगे कि ये मालिक की हैं, तो फिर मुश्किल नहीं आएगी, फिर उसके रास्ते में ही लगेंगे। अब कंपनी ने गाड़ी दी है तो कंपनी के काम के लिए तो आप यूज ना करें, और कहें कि नहीं वो वहां के लिए नहीं, मैं तो अपनी और कामों के लिए यूज करूंगी, ऐसे तो नहीं हो सकते। तो हम वैसे तो कहते हैं हर चीज का मालिक अल्लाह है, हर चीज उसने दी हुई है, पर जहां कुछ लगाने का मामला आता है तो कहते हैं क्यों, मेरी जिंदगी है, मेरा टाइम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पैसे हैं। अल्लाह कहता सबका मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि तुम तो ये कह दो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी तो नमाज, मेरी तो कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। यही ईमान है ना। इंसान कहता क्यों, मैं क्यों दूं, मेरी जिंदगी, मालिक तो आप खुद बन बैठे हैं। तो याद रखो, हुआ तो आइज्जु मन तशाओ, और इज्जत का मालिक भी वही है, इज्जत के खजाने भी उसके पास हैं, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है। इन्नल इज्जत लिल्लाही जमीआ, बेशक इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है। आप देख लें, इसीलिए अबू जहल इतना बड़ा इज्जत वाला बना फिरता था, दो बच्चों ने उसको कत्ल किया और उसकी लाश एक कुएं में पड़ी हुई थी, और अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से मिस्र के इकतदार पे पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, लाग ऐसे रहा है कि शायद दर बदर हो रहे हैं, मगर अल्लाह ने इज्जतों के दरवाजे खोल दिए। कितनी इज्जत मिली कि आपसे ज्यादा इज्जत वाला तो कोई है ही नहीं, सिर्फ 8 साल के बाद उसी जगह को फतह कर रहे हैं। इज्जत जिसको चाहे दे और जिसको चाहे जलील कर दे। तो यही चीजें हम अपने लिए चाहते हैं ना, इज्जत चाहते हैं, जिल्लत से बचना चाहते हैं, बाचात के छिनने से बचना चाहते हैं। तो फिर अल्लाह की तरफ जाओ, ये सब चीज वहां से मिलेगी। बियदिकल खैर, सारी भलाई है अल्लाह तेरे हाथ में है। यही जो मैं अभी बात कह रही हूं ना, कि खजाने सारे उसके हाथ में, खैर के खजाने उसके हाथ में, जिसको चाहे खैर दे दे, जिसको खैर चाहिए ना, भलाई चाहिए, वो उसी से मांग ले। और दूसरा मतलब इसका क्या है, तेरे हाथ में खैर ही खैर है अल्लाह, तू जो करता है ना उसमें खैर है। हमें चाहे उसके अंदर कोई शर नजर आ रहा हो, हमें चाहे उसके अंदर कोई ऐसी बात नजर आ रही हो कि ये तो सही नहीं, इसके अंदर तो कोई, मुझे तो समझ नहीं आती कि इसमें क्या खैर हो सकती है। कई दफा ऐसे होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, हम कहते हैं इसमें क्या भला खैर हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया बियदिकल खैर, तुम ये कह दो कि अल्लाह सारी भलाई तेरे हाथ में, तेरी तरफ से भलाई भलाई होती है। मोमिन के लिए उसके हर वाक्य में, हर काम में अल्लाह ताला खैर ही डाल देता है, चाहे वो अपने लिए उसको बुराई समझता हो। आसान तकराहु शैअन वह हुआ खैरुन लकुम, हो सकता है तुम किसी चीज को अपने लिए बुरा समझो, लेकिन उसी में तुम्हारे लिए खैर है। जैसे सूरह कहफ आप पढ़ते हैं, देखते हैं ना उसके अंदर कैसे अल्लाह ताला ने एक बच्चे को मौत दे दी, तो उसमें भी माँ बाप के लिए खैर थी। क्या एक कश्ती को तोड़ दिया गया, उसमें कश्ती वालों के लिए खैर थी, लेकिन बजाहिर तो सारे शर के काम नजर आ रहे थे। तो किसी चीज के पीछे क्या खैर है हम नहीं जान सकते, हमारी शायद सारी जिंदगी हमें समझ ना आए, मगर हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि बियदी कल खैर। हम शॉर्ट साइटेड है ना, हमें तुम्हारी नजर देखें कितनी थोड़ा सा देख सकती, सामने की 2-4 चीजों को, अल्लाह की नजर आखिर तक देखती है, उसको पता। तो इसलिए ये यकीन हमारे अंदर होना चाहिए कि बेयदि कल खैर। कभी भी ना ये सोचें कि इसमें क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन आपके जहन में आने लगे, बस बेयदि कल खैर। इन्नक अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक के वो हर चीज पर कादिर, हर चीज देने पर कादिर है, लेने पर कादिर है। वो क्या कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, लिमिटलेस। उसकी ताकत का, उसकी कुदरत का ना हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, हम पहुंच ही नहीं सकते वहां तक कि उसकी कुदरत किधर तक जाती। इसीलिए हम कहते थे अला कुल्ली शैइन। अब आप देख लें हमारे कॉन्सेप्ट, ये देखिए ये बोलना ना बड़ा आसान है, ये आयत को और बड़ी प्यारी भी लगती है, इसका जो रिदम है वो इतना खूबसूरत है ना, हम अगर इसको याद आप करें ना, ब्यूटीफुल आयत। लेकिन इसका अकीदा, इसका यकीन दिल में बिठाना, ये इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान इंसानों की तरफ देखता है इज्जत पाने के लिए, उनके साथ ताल्लुकात बनाता है, पैसे वालों के साथ उठता बैठता है। अगर कोई जरा सी बात कह दे तो सोचता है कि मेरी इज्जत चली गई, मेरी इंसल्ट हो गई। क्या वो ये फिर वाकई समझता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में? नहीं, हम तो समझते हैं इज्जत इंसानों के हाथों में, अगर मैं इंसानों की नजर में इज्जत वाली बन गई तो मैं इज्जत वाली, उन इंसानों ने मुझे कुछ बुरा कह दिया तो मैं बुरी हो गई। नहीं, अल्लाह के हाथ में इज्जत, जिसको चाहे मुअज्जज कर दे। बिलाल हबशी है, गुलाम है, इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं उनके ऊपर, जो जो उनका आका था वो इतना तशद्दुद करता था, इतना मारता था। अब कोई देखने वाला कहे कि ओह ये तो जलील हो रहा है, नहीं, उनसे ज्यादा इज्जत वाला कौन हो सकता है, जिनके कदमों की चाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे आगे सुनी। फरमाया बिलाल, जब मेराज पे गए थे, बिलाल मैंने तुम्हारे कदमों की चाप अपने आगे सुनी है। सुभान अल्लाह, इतनी ऊंची उड़ान हो गई उनकी, हालांकि गुलाम है, हालांकि काले हैं, हबशी हैं। इज्जत अल्लाह के पास है, वो जिसको चाहे दे। आज लोग फखर से अपने बच्चों का नाम बिलाल रखते हैं, क्योंकि वो इज्जतों वाले थे। तो इज्जतें किसी के रंग से, किसी के पैसे से, किसी की चीजों से नहीं होती। इज्जत वो है जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, और जिसको अल्लाह जलील कर दे, जो उसके यहां जलील हो गया ना, वो चाहे जितने भी पैसे वाला हो। फिरौन को देख ले, किसी ने कभी अपने बच्चे का नाम प्यार से फिरौन रखा, नमरूद रखा? बड़ी बड़ी बादशाहतें इनको मिली, रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा? इसलिए कि इनको इज्जत नहीं मिली, इनको जिल्लत मिली। इतना कुछ हो के भी इनको जलील होना पड़ा दुनिया में। तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह की नजर में देखो कि अल्लाह की नजर में किसको इज्जत मिलती है, वही इज्जत वाला है। और नहीं मिली मालिक की नजर में, नहीं मिली तो वो जलील है। तो देखना फिर क्या है हमें कि मालिक मुझे कैसा देख रहा है, मालिक की नजर में मैं कैसी हूं। अगर कोई दो चार आपको बातें सुना देता है, उस पर रोने ना बैठ जाए, आए मैं तो जलील हो गई, हाय मेरी तो इंसल्ट हो गई। नहीं, इंसल्ट नहीं हुई, अपने आप को अल्लाह की नजर में देखें। पैगंबरों को इतनी बातें सुनाई गई, अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्ला, क्या उनकी इज्जत में कोई कमी आ गई? नहीं। नूह अलैहिस्सलाम को मार मार के इतना मारते थे, इतना मारते थे लोग, कि वो बेहोश होके गिर पड़ते थे तो उठा के उनको उनके घर के आगे फेंक जाते थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। अब देखने वाला क्या कहेगा, क्या इसमें जिल्लत है? नहीं। नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबरों में से है। तो याद रखिए, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाँ देखिए। इसीलिए दुआ किया करें, अल्लाह जमीन के ऊपर जब तक रखना तो इज्जत से रखना, और जमीन के नीचे भी इज्जत से ही लेके जाना, क्योंकि तेरे पास है सारी इज्जत। अल्लाह ताला देखें हमारे ईमान को ना जो खोल खोल के सामने रख देता है, देखो चेक करो अपने ईमान को, किधर तुम इज्जतें तलाश करते हो, किन की तरफ देखते हो इज्जतों के लिए। अल्लाह की मशीयत से मिलती है ये, उससे मांगो ना, उसकी इजाजत के बगैर किसी को नहीं मिल सकती। चाहे आपको 100% लग रहा हो कि फलां मुझे देगा, नहीं कोई नहीं दे सकता। इन्नका अला कुल्ली शयइन कदीर, तूलिजुल लैला फिन नहार, तू दाखिल करता है रात को दिन में। इतनी बड़ी कायनात में एक चेंज आती है, ये जो रात दिन में दाखिल हो रही है, यानी दिन घट रहा है रात बढ़ रही है, और फिर तू ली जो नहारा फिर लईल, तू दाखिल करता है दिन को रात में। हर रोज ये चेंज आ रहा है ना, रोशनी अंधेरे में बदल रही है, और अंधेरा बिल्कुल स्याह अंधेरा है। कभी कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतने काले स्याह आसमान के ऊपर कभी सफेदी हो सकती, काला कपड़ा भी आपने सफेद करना हो बड़ा मुश्किल है, स्याह काला कपड़ा, और ये इतना बड़ा आसमान उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये इतनी बड़ी चेंज लेकर आ जाता है, कहीं दिन घट रहा है और रात बढ़ रही है, आगे बढ़ते बढ़ते दिन को टेक ओवर कर लेती है, कहीं दिन बढ़ रहा है रात को टेक ओवर कर लेता है, कवर कर लेता है, रात खत्म हो जाती है। जब दिन और रात तुम चेंज ये देखते हो तो तुम्हें किसी की मिल्कियत महसूस होती है? हाँ, कुछ महसूस होता है कि इतनी बड़ी चेंज कौन लेकर आ रहा है, इतने वास्ट वास्ट एरिया पे रोशनी को अंधेरे में कौन चेंज कर रहा है? हाँ, वही तो खुदा है, वही तो अल्लाह है। और किसी का इस पे इख्तियार नहीं है, हम इसको काबू कर सकते हैं? कहीं हमारा दिन पे इख्तियार है ना, दिन पे है ना रात पे है। कई दिन ऐसे होते हैं देखें कि इंसान चाहता है ये दिन लंबे हो जाए, ठहर जाए, कभी ना गुजरे, मगर वो दिन भी गुजर जाता है। और कई दिन और रात ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है ये वक्त जल्दी से चला जाए, मगर वो अपनी रफ्तार पे ही चलते रहते हैं। इसी तरह कोई चाहता है मैं अपनी रात को बढ़ा लूं, तो नहीं बढ़ा सकता। कोई चाहता है मैं अपना दिन छोटा कर दूं, नहीं कर सकता। सब अल्लाह के इख्तियार में। तो तुम ये देखते हो ये इतनी बड़ी चेंज जो कायनात में आ रही है, साइंस ने इतनी तरक्की कर रही है, वो दिन और रात को चेंज नहीं कर सके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन के बाद दिन ही आ जाए। तो जो अल्लाह इतनी बड़ी चेंज ला सकता है ना, उसके लिए क्या मुश्किल है कि किसी को बादशाहत दे दे या किसी से पल भर में छीन ले, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। चाहे ये किसी इंडिविजुअल के लिए हो या पूरी पूरी कौमें हैं, अल्लाह ताला किसी कौम को उरूज दे देता है, किसी को जवाल दे देता है। आपको नहीं पता किसी को आज इज्जत मिल रही है तो कल को उसको जिल्लत मिल जाए। बड़ी बड़ी एम्पायर्स आपने दुनिया में देखे, बड़े बड़े कौमें आई जिनको अरूज मिला, उसके बाद वो कैसे जवाल पजीर हुई, और कई हैं जो जवाल पे थी वो कैसे उठी। फिर आप ये बताइए, अगर ऐसा ही हो रहा है जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, कोई आज ऊपर है तो कल नीचे है, कोई कल नीचे था तो आज ऊपर है, तो फिर ये मुझे बताएं हम किसी भी नेमत पे, किसी भी मुल्क जो हमें मिला हुआ है, कोई भी हमें कहीं पावर मिली हुई है, क्या अब हम कभी उसको परमानेंट समझ सकते हैं? कभी उसके ऊपर फूल सकते हैं? कभी उस पर अकड़ सकते हैं? कभी उसको हमेशा के लिए अपनी मिल्कियत समझ सकते हैं कि बस मेरा ही है और किसी और को नहीं मिल सकता, बस अब मैं ही हूं, मैं ही मैं हूं? नहीं, दिन के बाद रात भी आ जाती है, याद रखिएगा। और क्या कभी ऐसे होना चाहिए कि किसी के ऊपर गम है, परेशानी है, तो वो मायूस हो जाए, हाय अब तो कभी मेरे दिन बदलेंगे ही नहीं, अब तो कभी कुछ होगा ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, रात के बाद दिन भी आता है, अल्लाह गम के बाद खुशी लाता है, मायूसी के अंधेरों के बाद उम्मीद दिलाता है, और खुशी के बाद गम भी लाता है। तो ना कोई फूल जाए खुशी के दिनों में اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دے کہ اب خوشی آ گئی ہے تو اتنے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، خوب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خوب ناچتے ہیں گاتے ہیں الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں۔ او یہ خوشیاں پرماننٹ نہیں ہیں، دنوں کے بعد رات ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا غم میں پاگل ہو جائے کہ اللہ سے ہی مایوس ہو جائے۔ نہیں، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ رات کے بعد دن بھی آنا ہے، نہ دن ہمیشہ ٹھہرتا ہے نہ رات ہمیشہ رہتی، بس یہ سب امتحان ہے۔ خوشی میں اللہ دیکھ رہا ہے میں نے کیا کیا، غم میں دیکھ رہا ہے میں نے کیا کیا۔ یہ سب جو نظر آ رہا ہے نا وہ ویسا نہیں رہتا، ایک چیز جا رہی ہے تو دوسری اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ تو یہ ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہیں یہ آیتیں، بہت بڑا سبق، ان میں بہت غور کرنے کی بات ہے، اور ان کو آپ جتنا اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے نا، آپ دیکھیں یہ آپ کو، آپ کے ایمان، آپ کا بھروسہ، آپ کو ایک اللہ کے اوپر توکل کرنا سکھا دیتی ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں ناممکن لگتی ہیں نا کہ کیسے ہوگا، کبھی یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا، کیا اللہ رات اور دن نہیں لے کر آ رہا، اور تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اور زندہ کو جو مردہ سے نکال سکتا ہے اور مردہ کو جو زندہ سے نکالتا ہے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ حی کو مردہ سے کیسے نکالتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، مردہ ہے انڈا، اس میں سے چوزا نکل آتا ہے، بیج کیا ہے؟ مردہ ہے، اسے درخت نکل آتا ہے، نطفہ کیا ہے؟ مردہ ہے نا، ایک مرد کا نطفہ مردہ ہے، اسے کیا نکل آتا ہے؟ ایک زندہ انسان بن جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے زندہ اور مردہ سے مراد اسلام اور کفر لیا ہے، ایک بندہ مومن ہے اس کے گھر ایک کافر پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک کافر ہے اس کے گھر ایک مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ کافر سے مومن کا پیدا ہونا کیا ہے؟ مردہ سے زندہ کا پیدا ہو جانا، سبحان اللہ۔ اور زندہ اور مردہ کو بعض علماء نے عالم اور جاہل بھی لیا، تو نکالتا ہے زندہ کو، یعنی عالم مردہ سے نکل آتے ہیں، کئی کئی جاہل پیرنٹس ہوتے ہیں بالکل عقل سمجھ نہیں ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں، ان سے عالم پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو یعنی جاہلوں کو، زندوں سے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں ایسی بالکل جہالت کی ان کے اندر ہوتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے، ویسے ہی آپ کیا دیکھیں کہ انسان زندہ ہے اسے مردہ ہو جاتا ہے وہ، یا مردہ بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہر زندگی موت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہر موت سے زندگی نکل رہی ہے، سبحان اللہ۔ زندہ جسم میں کیسے موت سرایت کر جاتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری سکن جو ہے کٹ جاتی ہے، اس کے اوپر نئی سکن، زندہ سکن آ جاتی ہے، ہمارے ڈیڈ سیلز، روز سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں اور ان کی جگہ زندہ سیلز بنتے ہیں، مسلسل یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کیسا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے، کتنی قدرت کا مالک ہے جو ایسے چینج لا رہا ہے۔ اور پھر صرف یہ زندگی نہیں دیتا وہ، ان کو رزق، روزی، سب چیزیں ان کو دینا اللہ کا کام ہے، اس کی اختیار میں ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ آ، انسان نے اتنی ایجادات کی، آج تک مردہ سے زندہ کو پیدا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے۔ تو تم بھی یہ نہ سمجھو گے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کی طاقت اللہ کے اختیار میں۔ تو پھر ہمیں عزت چاہیے تو کس کے پاس جائیں گے، ہمیں کوئی اختیار چاہیے تو کس کے پاس جائیں گے، ہم غم میں ہیں، پس رہے ہیں، تو کون ہماری رات کو دن میں بدل سکتا ہے، کون ہماری زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے؟ یہ اس کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے در پہ یہ نہیں ملتا، کسی قبر میں یہ نہیں ملتا، کسی جگہ پہ یہ نہیں ملے گا۔ वतरज़ुक़ु मा तशाउ, और तू रिस्क देता है जिसको तू चाहता है, बेगैरी हिसाब, बगैर हिसाब के। रिस्क भी तेरे हाथ में, सारी भलाई तेरे हाथ में। फिर लोगों से मुझे क्या मांगना और उनसे क्या डरना और उनके पीछे पीछे क्या मिन्नतें करना। सारा रिस्क तेरे, रिस्क के खजाने भी तेरे पास हैं। और देखिए, रिस्क में आप ना बिल्कुल लिमिटेड ना हो जाएं कि हम सोचते हैं रिस्क मींस के पैसा। पैसा भी है रिस्क, वो भी जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है। आप देखिए, अंगूठा छाप लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है गिनने का भी नहीं उनको पता होता। लैंग्वेज भी नहीं कईयों को आती कि क्या लैंग्वेज है बोलनी उस मुल्क में, लेकिन इतना पैसा है तो जिसको मर्जी चाहे दे, उसके ऊपर खजाने खोल दे अपने रिस्क के। और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले डिग्रियां ले लेके उनकी जूतियां चटक जाती हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। तो उसके पास है रिस्क के खजाने, जिसको चाहे बगैर हिसाब के दे। और इसमें फिर क्या और चीजें आ जाती हैं रिस्क में, मैंने आपको सूरह बकरा जब स्टार्ट हो रही थी तो बताया था, रिस्क में जो भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमते हैं ना, वो सभी आ जाती हैं। सेहत भी रिस्क है आपका, अल्लाह ताला ने जो जिस्मानी कुव्वत दी हुई है वो भी रिस्क है। जहनी आपको, जहन आपको अच्छा दिया हुआ है, जो आपको आपकी जहानत है वो भी रिस्क है। किसी को खूबसूरती दे दी है वो भी रिस्क है। ये सब रिस्क है जिसको चाहे बगैर हिसाब किताब के देते। फिर हम कौन होते हैं ये सवाल करने वाले, उसके पास इतना क्यों है, पता नहीं उसको कैसे मिल गया, इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए था। नहीं, अल्लाह के फैसले हैं ये, उसके फैसले हैं। हर फैसले के पीछे उसकी मशीयत है। तो फिर हम तो इतराज नहीं कर सकते ना, और ना ही हम किसी और के आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह ने एक दर का भिखारी बना दिया और वो उसका दर है। सारे दर छोड़ दो, उसके पास आओ। तो जिसको जो भी चाहिए, जिस तरह का भी रिस्क चाहिए, वो बेहिसाब देने के लिए, तो उससे मांगो, उससे लो। उसके हाथ में। अब इस आयत का थोड़ा सा शाने नजूल भी देख लेते हैं कि ये कब नाजिल हुई, किस वक्त में नाजिल हुई। इसका शाने नजूल के बारे में कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आपने अपनी उम्मत से रोम और फारस की सल्तनतों का वादा किया, तो यहूदियों और मुनाफिकों ने कहा, कहां रोम और फारस के मुल्क और कहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात तो बड़ी दूर की है। और एक और रिवायत भी आती है कि जब जंगे अहज़ाब हुई थी ना, तो उससे पहले आपको पता है खंदक खोदी गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के निशान लगाए हर 10-10 आदमियों की जमात को, 40-40 हाथ, समझ लें 40 फुट तक खंदक खोदने का हुक्म दिया। तो उस वक्त कोई क्रेने या ये तो होती नहीं थी, तो बंदों ने खुद खोदनी थी। और भूख भी थी और खौफ भी था, और कितनी उस वक्त लोगों के ऊपर एक ऐसा सख्त वक्त था। तो उस वक्त खंदक खोदते खोदते एक ऐसी चट्टान आई जो किसी कुदाल से, किसी फावड़े से नहीं टूटती थी। तब सहाबा कराम ने हज़रत सलमान फारसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और उन्होंने आकर आपको बताया कि ऐसे नहीं एक पत्थर टूट रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान के हाथ से कुदाल लेके चट्टान पर एक ज़र्ब लगाई, तो आपकी जर्ब से चिंगारियां उड़ी और अंधेरी रात में बिजली की तरह रोशनी पैदा हुई। आपने नारा तकबीर बुलंद किया, मुसलमानों ने भी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोशनी में मुझे हीरा के मोहल्लात नजर आ रहे हैं। फिर आपने दूसरी जरब लगाई, फरमाया इस रोशनी में मुझे रोम के मोहल्लात नजर आ रहे हैं। आपको पता है रोम फारस उस वक्त ना सुपर पावर्स थी, जिनको सुपर पावर सो कॉल्ड दुनिया में सुपर पावर कहते हैं, वैसे तो अल्लाह ही की पावर है जो सुपर पावर है, लेकिन दुनिया में ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। तो रोम को ना बड़ी एक बिग पावर थी। तो फिर तीसरी जरब लगाई, फरमाया इस रोशनी में मुझे सना के, यमन के मोहल्लात नजर आते हैं, और मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके खबर दी है कि मेरी उम्मत इन सारे मुल्कों पे काबिज होगी और गालिब होगी, सो तुम्हें खुशखबरी हो। अब ये सुन के मुनाफिकीन जो थे वो तो हंसने लगे कि ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा, तुमको अपने नबी पे हैरत नहीं होती, वो तुमसे झूठे वादे करता है, वो तुम्हें यह खबर दे रहा है कि वो यसरब से हीरा और मदाइन और कसरा, कैसर और कसरा है ना, उनके मोहल्लात को देख रहा है और वो मुल्क तुम्हारे लिए फतह होंगे, हालांकि तुम मारे खौफ के खदके खोद रहे। तुम्हारा तो हाल ये है, भूखे हैं, प्यासे हैं, और देखिए अब 10-10 लोगों को 40-40 हाथ खंदके खोदनी है, ना दिन का पता है, ना रात का पता है, ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना आराम मिल रहा है, और खाने पीने का कुछ था ही नहीं, पेटों पे पत्थर बांधे हुए थे। तो वो हंसने लगे ना, फिर देखो जरा तुम मारे खौफ के खंदके खोदने लगे हुए हो, ये तुम्हें उस उधर की भाई खुशखबरियां देने लगे हुए, और तुम में इतनी ताकत कहाँ है कि इन खंदकों से बाहर निकल के अपने दुश्मनों का मुकाबला ही कर सको, तो तुम्हें तो इतनी नहीं ताकत है, तो तुम कहां रोम और फारिस और इनके ख्वाब देखने लगे। तो तब ये आयत नाजिल हुई थी कि अल्लाह है जिसको चाहे बादशाहत दे दे, जिससे चाहे छीन ले। तो अब ये देख लें कि वाकई फिर उसके बाद क्या हुआ, मक्का फतह हो गया था, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये दुआ सिखाई है। हालांकि आप वैसे देखें तो इसमें मांगा कुछ नहीं गया, और करें ना, इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया, सिर्फ ये कहा गया अल्लाह तेरे हाथ में, सब तेरा इख्तियार है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये दुआ सिखा दी, क्योंकि अब जो था वो इख्तदार शिफ्ट होने वाला था। नबुवत तो मिल गई, नबुवत मुंतकिल हो गई, ये उम्मत भी आपको देखे नई उम्मत ये बन गई, उम्मत मुस्लिमा को अब वो ओहदा मिल गया, किबला भी चेंज हो गया, बैतुल मकदस से बैतुल्ला बन गया, इमामत उनसे इनको मिल गई। अब ये और एक इख्तदार मिलना जो कुफार से मुसलमानों की तरफ आ रहा है, तो अब ये दुआ सिखा दी गई कि अब ये दुआ मांगो। अल्लाह ताला अपने नबी को जो कुछ देना चाहता है ना, पहले उसके लिए अल्लाह ताला दुआ सिखा देते हैं। जैसे जब हिजरत का हुक्म आने वाला था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखा दी अल्लाह ताला ने कि आप दुआ करें, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन वअखरिजनी मुखराजा सिदकिन वजालनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, ये सूरह इसरा में कि ये दुआ है नबी, ये दुआ किया करें आप। तो अब जब ये मक्का फतह होना था इसके बाद, तो अब ये दुआ कर किया करें, बादशाह इज्जत जिल्लत तू अता फरमाता है, तू जब रात को दिन बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, तो अल्लाह तू कब तक हमें इस गुर्बत में, इस हिजरत के आलम में, इस फकर के आलम में रखेगा, हमें भी इस दुनिया का इक्तदार नसीब कर दे। तो जब मुर्दे को जिंदा बना सकता है, जिंदा को मुर्दा कर सकता है, मुर्दे में भी अल्लाह ही जान डालता है ना, तो अल्लाह हम जिंदों में भी जान डाल दे। तो बहुत स्ट्रांग है ये दुआ। और फिर उसके बाद वही हुआ जो हिस्ट्री ने देखा, मक्का फतह हुआ, मुसलमानों को इक्तदार मिला, वो अल्लाह ताला ने फिर वो कर दिखाया। ये बहुत प्यारी दुआ है इस लिहाज से। अब आप इसकी तिलावत सुने, फिर आगे चलते हैं
इंशाअल्लाह। تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب।
अब ये आयात पढ़ के तो इंशाल्लाह ताला हमें अपनी सोच को स्ट्रेट करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमसे चली गई है तो गम से हलकान ना हो, खुद को दीवाना ना करें, फिर आ जाइए। रात हमेशा नहीं रहती, हमेशा के लिए नहीं आती, फिर दिन आएगा। और मुल्क इज्जत रिज्क अल्लाह के हाथ में, हमने सिर्फ कोशिश करनी, गम नहीं लगाना, ताकि अल्लाह के हाथ में छोड़ दे, वो उसका काम है।